पृष्ठ संख्या 121, तबले का जन्म स्थान। इसके जन्म स्थान के विषय में भी दो मत है। देश के कुछ प्रसिद्ध कलाकार तबले का जन्म स्थान पंजाब मानते हैं। उनके अनुसार तबले का जन्म मृदंग के आधार पर पंजाब में हुआ। इसकी पुष्टि में उनका तर्क है कि आज भी पंजाब में बाएं, जिसे वे धामा कहते हैं, पर आटा लगाने की प्रथा है, जो मृदंग से संबंध का प्रतीक है। किंतु मात्र आटा चिपकाने से हम यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि तबला पंजाब में ही जन्मा है। संभव है कि देश के अन्य भाग के कलाकारों को यह रीति असुविधाजनक लगी हो और उन्होंने इस रीति को न अपनाया हो। तबले का घनिष्ठ संबंध पखावज से रहा है, जो उसके पटाक्षर, बोल, बंदिशों से अस्पष्ट दिखता है। तबले के विविध घरानों में पंजाब घराने की वादन शैली तथा बोल बंदिशें पखावज के अधिक निकट हैं। अतः तबले पर पंजाब घराने की बंदिशों को प्रस्तुत करते समय आटे वाले बाएं का खुला प्रयोग कदाचित असुविधाजनक नहीं रहा होगा। फलतः पंजाब घराने में उसका प्रचार यथावत बना रहा होगा, जो कुछ वर्ष पूर्व तक पंजाब के शहरों में और आज भी उसके गाँव में कहीं कहीं प्रचलित है। तबले का जन्म स्थान पंजाब में है, इसकी पुष्टि करते हुए पंडित किशन महाराज ताल प्रकाश की प्रस्तावना में के जगह लिखते हैं, उस्ताद सिद्धार्थ खां से पूर्व भी पंजाब में तबला प्रचलित था, जिसका प्रमाण एक प्राचीन किंवदंती से प्रकट होता है। सिद्धार्थ खां के पौत्र उस्ताद मौदू खां की शादी पंजाब के किसी तबला वादक की लड़की से हुई थी। पृष्ठ संख्या 122। इस अवसर पर उस्ताद मौदू खां को पंजाबी गतें दहेज में दी गई थीं। इससे स्पष्ट है कि पंजाब में तबला काफी प्राचीन काल से था और आज भी भारत का समस्त तबला घराना पंजाबी गतों को तबले का प्रमुख अंग मानता है। प्रथम बात तो यह है कि उस्ताद मौदू खां को दहेज में दी गई गतें 500 ही थीं। इसका क्या प्रमाण है? हमारे उस्तादों को सदैव बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत होती है। गतों की यह संख्या बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। दूसरी बात यह है कि मध्यकाल से पंजाब में पखावज अत्यंत प्रसिद्ध तालवाद था, अतः मौदू खां को दी गई बंदिशें गतें न होकर पखावज की परने भी तो हो सकती हैं, जिन्हें अनपढ़ उस्तादों ने भाषा की अशुद्धि के कारण गतें कहकर संबोधित किया हो। आज भी ऐसे अनपढ़ उस्तादों की कमी नहीं है, जो परन, टुकड़े और गत के बीच का अंतर नहीं समझ पाते और कभी चक्रदार को गत कह देते हैं तो कभी टुकड़े को गत कहकर संबोधित करते हैं। यदि हम मान भी लें कि उस्ताद सिद्धार्थ खां के पौत्र उस्ताद मौदू खां को उनके पंजाबी ससुर से दहेज में तबले की बंदिशें मिली थीं, तो उस्ताद मौदू खां का ससुर उस्ताद सिद्धार्थ खां के पुत्र की उम्र का होना स्वाभाविक है। अतः क्यों न उस्ताद सिद्धार्थ खां के समय में ही पंजाब में भी तबले का प्रचार हुआ हो और सिद्धार्थ खां के समकालीन लाला भवानी दास द्वारा वह पंजाब में फैला हो। बल्कि यही सत्य है और ऐसा ही हुआ है। जिस प्रकार दिल्ली में उस्ताद सिद्धार्थ खां द्वारा अनेक बंदिशों की रचनाएं हुई और उनके वंशज एवं शिष्य परिवार में फैली थी, उसी प्रकार पंजाब में लाला भवानी दास और उनके शिष्यों में भी अनेक बंदिशों की रचनाएं की होंगी। तभी तो दिल्ली और पंजाब जैसे दो पृथक घराने अस्तित्व में आ सके। अतएव उस्ताद मौदू खां को दहेज में मिली पंजाबी गतें पंजाब घराने के प्रवर्तक पंडित भवानी दास की स्वयं बनाई हुई हों या तो उनके किसी शिष्य की बनाई हो सकती हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि पंजाब घराने के आदि प्रवर्तक लाला भवानी दास अथवा भवानी दीन थे, जो दिल्ली के उस्ताद सिद्धार्थ खां डाढ़ी के समकालीन थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां का मत है कि उन दिनों पंजाब और दिल्ली एक थे, आज की भांति अलग अलग नहीं थे, परंतु दिल्ली राजधानी होने के कारण उसमें सदैव से विशेष आकर्षण रहा है। लोग जीविकोपार्जन के लिए वहां आना और रहना पसंद करते थे। आश्चर्य नहीं कि पंजाब के तबला वादक अपनी जीविका के लिए दिल्ली आए हों और अस्थाई रूप से बस गए हों। आईने अकबरी और मौदन उल मुस्की ग्रंथों के अनुसार डाढ़ी मूल के लोग पंजाब के रहने वाले थे। सिद्धार्थ खां डाढ़ी पंजाब के रहने वाले हो सकते हैं, परंतु उनकी कर्म भूमि दिल्ली रही है और उनके वंश एवं शिष्य परंपरा वहीं फैली। श्री छेदाराम पखावजी द्वारा रचित ब्रिज के पखावजियों के इतिहास में उल्लेख है कि लाला भवानी दास ब्रिज के निवासी थे, किंतु उनकी कर्मभूमि दिल्ली, लखनऊ और विशेषतः पंजाब रही है। पृष्ठ संख्या 123। यही कारण है कि उनके शिष्य जहां एक ओर बांदा उत्तर प्रदेश के मृदंग सम्राट कुदऊ अवध के अमीर अली पुत्र खब्बे हुसैन ढोलकिया हैं, तो दूसरी ओर पंजाब के ताज खां डेरेदार कादिर बख्श प्रथम और हद्दू खां लाहौर वाले हैं। पंजाब भवानी दास और सिद्धार्थ खां के बीच दिल्ली दरबार में हुई प्रतियोगिताओं में कई बार खां साहब पराजित भी हुए थे। आचार्य बृहस्पति ने अपने ग्रंथ संगीत चिंतामणि के पृष्ठ संख्या 356 में सिद्धार्थ खां के पराजित होने का उल्लेख किया है। पराजित होने की घटना से दुखी होकर सिद्धार्थ खां ने पखावज बजाना छोड़ दिया तथा तबला अपना लिया, जो उन दिनों अभिजात संगीत में प्रवेश कर चुका था। तत्पश्चात उस्ताद सिद्धार्थ खां ने पखावज का आधार लेकर तबला बाया में परिवर्तन किए, उसमें अनेक नवीन संशोधन किए तथा उस पर अर्धपाणी चाटी प्रधान बाज का निर्माण करके उस नवीन शैली में अनेक बंदिशों की रचना की एवं उन्हें अपने शिष्यों को सिखाया। वह युग ख्याल गायकी के उत्थान का युग था और तबला वाद्य तथा उसकी वादन प्रणाली ख्याल की संगत के लिए पूर्णतः अनुरूप थी, अतः तबले का सर्वत्र प्रचार होने लगा। समकालीन होने के कारण उस्ताद सिद्धार्थ खां और लाला भवानी दास की परंपराएं दिल्ली तथा पंजाब में लगभग एक ही समय में फैली। आज दिल्ली घराने के उस्ताद सिद्धार्थ खां के वंशज एवं शिष्यों की 10वीं पीढ़ी चल रही है, जबकि पंजाब में 9वीं पीढ़ी है। उस्ताद अल्लाह खां ने लाला भवानी दास की 8 पीढ़ियां मुझे गिनाई हैं। अतः पंजाब घराना दिल्ली घराने से पुराना हो यह मुझे योग्य नहीं लगता। पंजाब में दुक्कड़ नाम का एक वाद्य प्रचलित था। यह वही दुक्कड़ वाद्य है जिसका संबंध तबले के आविष्कार की कहानी के साथ जुड़ा जाता है। लाला भवानी दास ने उस वाद्य पर एक नवीन बाज का आविष्कार करके उसे अपने मुसलमान शिष्यों को सिखाया। बाद में यह वाद्य तबला नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसी कहानी प्रचलित है। पंजाब में पखावज का प्रचलन सदा से रहा है। लाला भवानी दास के घराने के सभी शिष्य पखावजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नासिर खां, मियां फकीर बख्श एवं मियां कादिर बख्श के नाम के साथ पखावजी शब्द ही प्रयोग होता है। पंजाब में तबले का प्रचार मियां फकीर बख्श के समय के पश्चात ही हुआ है। पंडित किशन महाराज भी ऐसा मानते हैं कि पंजाब में तबला वादकों के लिए आज भी पखावजी शब्द का प्रयोग होता है। अतः लाला भवानी दास के सभी शिष्य केवल तबला वादक ही थे और उनका बाज पखावज के निकट होने के कारण उन्हें पखावजी के नाम से संबोधित किया जाता था। परंतु गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह तर्क भी सारहीन जान पड़ता है। लाला भवानी दास, मियाँ फकीर बख्श, कादिर बख्श या नासिर खां पखावजी भले ही दुक्कड़ या तबला अच्छा बजा लेते रहे होंगे, परंतु मूलतः वे उच्च कोटि के पखावजी थे और वे पखावजी नाम से संबोधित किए जाते थे, तबलिए नहीं। इसी प्रकार दिल्ली के उस्ताद सिद्धार्थ खां व उनके वंशज एवं शिष्यगण तबला बजाते थे और शुरू से ही तबलिए शब्द से संबोधित किए जाते थे, पखावजी नाम से नहीं। पंजाब में तबला वादन के प्रचलन का श्रेय उस्ताद फकीर बख्श एवं उनके गुरु भाइयों को है। उस्ताद के पुत्र कादिर बख्श एवं उनके अन्य प्रसिद्ध शिष्य बाबा मलंग मियां करम इलाही मियां मीरा बख्श घिघवालिये ने तबले को खूब लोकप्रिय बनाया। पृष्ठ संख्या 124। रायगढ़ मध्य प्रदेश के राजा चक्रधर सिंह जू देव के शासनकाल सन 1921 से 1947 में उन लोगों का वादन वहां हुआ है, ऐसा इतिहास में उल्लिखित है। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले सन 1719 से 1748 ईस्वी तक के इतिहासकार दरगाह कुली खां के अनुसार नियामत खां सदारंग, उनके भाई खुसरू खां, लाला भवानी दास, भवानी सिंह पखावजी तथा उस्ताद सिद्धार्थ खां डाढ़ी, ये चारों कलाकार समकालीन थे। उस्ताद सिद्धार्थ खां द्वारा दिल्ली घराने में तबले का प्रचार ईस्वी सन 1700 से 1725 के बीच हुआ लगता है, क्योंकि सन 1855 के आसपास लिखी गई पुस्तकें मौदन उल मूसिकी लेखक हकीम मोहम्मद करम इमाम तथा सरमाए इशरत लेखक सादिक अली सिताब खां, इन दोनों में तबला के कलाकारों के नाम तथा उनकी कला परस्ती का उल्लेख मिलता है। सरमाए इशरत में तो दिल्ली बाज के कायदे भी लिखे गए हैं, अतः इससे मालूम होता है कि सन 1855 ईस्वी तक दिल्ली घराना तथा उसके कायदे काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। तबले के एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की चर्चा मिलती है, वह सन 1900 ईस्वी के आसपास फारसी भाषा में मुल्ला मोहम्मद इसहाक द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में तालांगों की व्याख्या, वर्णों की निकास विधि एवं लिपिबद्ध कायदे आदि उपलब्ध हैं। लेखिका को इस पुस्तक के विषय में बरेली उत्तर प्रदेश के डॉक्टर रमा बल्लभ मिश्र एवं मुंबई के पंडित तारानाथ से जानकारी प्राप्त हुई है, स्वयं देखने का अवसर नहीं मिला। ख्याल गायकी का प्रचार 15वीं शती के पूर्व हो चुका था, अतः उस्ताद सिद्धार्थ खां के 250 वर्ष पूर्व भी तबला अभिजात संगीत में प्रवेश कर चुका था। अतः 15वीं से 18वीं शती के बीच के वर्षों में तबले के विकास के विषय में हम अनभिज्ञ हैं। उस्ताद सिद्धार्थ खां ने वर्षों के परिश्रम एवं चिंतन के फलस्वरूप तथा उन दिनों ताल वाद्यों पर बजने वाले बोलों के आधार पर नवीन रचनाएं की। तबले के विकास में उनका श्रेय अनन्य है। उन्होंने पखावज की वादन शैली में परिवर्तन करके उसे तबले पर बजाने योग्य बनाया। इसी से तबला मौलिक वाद्य के रूप में सामने आया। उल्लेखनीय है कि आज उत्तर भारतीय संगीत में जो स्थान तबले को प्राप्त है, वह अन्य किसी वाद्य को नहीं है।